ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवादित आदि लीला प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 13 अनुवाद। चूंकि वे भगवान हरि से अभिन्न है, वे अद्वैत का नाम से ज्ञात होते हैं, और चूंकि वे भक्ति प्रचार करते हैं, वे आचार्य नाम से ज्ञात होते हैं। वे भगवान है और भगवान का भक्त का अवतार है, इसलिए मैं उनमें शरण लेता हूँ। आज अद्वैत सप्तमी है। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव पर महोत्सव उद्यापन होते हैं इस दिवस पर। इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है और सामान्यतः मर्यादा के अनुसार जिस श्लोक का तात्पर्य नहीं है उस श्लोक पर हम नहीं कहते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद स्वयं इस श्लोक पर इस दिवस पर अद्वैत सप्तमी दिवस पर एक प्रसिद्ध कथा दिए थे। प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी हमारे इस्कॉन में बहुत भक्त है और भविष्य में सब आचार्य होंगे और 10,000 आचार्य होंगे और आचार्य का अभाव नहीं होंगे। तो अद्वैत तत्व, आज अद्वैत तत्व पर चर्चा होना चाहिए। हम हर रोज कीर्तन करते हैं श्री पंच तत्व का, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, और हम श्री पंच तत्व का चित्र देखते हैं जिसमें श्री अद्वैत आचार्य उपस्थित है। और यदि आप मायापुर जाएंगे, आज बहुत बड़ा महोत्सव होगा मायापुर में, अद्वैत आचार्य का महोत्सव होगा, तो वहाँ पर इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास ये पंच जन महाजन महत्तम जन विराजमान है, और वहाँ पर अद्वैत भवन भी है। अद्वैत आचार्य के मुख्य निवास शांतिपुर में, शांतिपुर में था, जो मायापुर से करीब कितना 40 किलोमीटर दूर है, गंगा का दूसरा तट पर। और अद्वैताचार्य का एक भवन भी था मायापुर में, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता माता के भवन उनके घर से थोड़ा दूर था। तो अद्वैत तत्व, अद्वैत आचार्य कौन है? तो अद्वैत तत्व समझना बहुत कठिन है, दुष्का है, क्योंकि अद्वैत आचार्य को समझने के लिए पहले समझना चाहिए भगवान कृष्ण कौन है। और भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि। तो पहली बात है कि परम सत्य को समझने के लिए बहुत कम लोग तैयार है, बहुत कम लोग कुछ भी रुचि मिलते हैं परम सत्य की खोज में। तो कुछ लोग है पुण्यवान जो भगवान की उपासना करते हैं, परंतु वो उपासना करते हैं किस लिए? भौतिक अर्थ, भौतिक लाभ, भौतिक सुविधाओं मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो परम सत्य की खोज करते। और यततम अपि सिद्धानं कश्चिन मांग वेती तत्पतः। और जो परम सत्य का अनुसंधान करते हैं, जो बहुत कम लोग हैं, तो उनमें ज्यादातर तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के उपासक है। या सोचते कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है, परम सत्य निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। तो परम सत्य और आध्यात्मिक सत्य प्राप्त प्रापक जो है, जो वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर आया है, तो ऐसे लोग में बहुत कम है जो स्वीकार करते हैं कि परम सत्य कृष्ण है। बहुनाम जन्म नाम अंधे ज्ञान वांग मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। जो परम सत्य का अनुसंधान करते हैं, ज्यादा तो ज्ञान मार्ग से अनुसंधान करते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग से भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला और माधुरी समझना संभव नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्ति से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं और वे सबके हृदय में परमात्मा रूप अंतर्यामी रूप में उपस्थित है। और मथस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, उनसे हम ज्ञान मिलते सभी प्रकार का ज्ञान। इस भौतिक संसार में वो ज्ञान जो है वो एक प्रकार का ज्ञान है जिससे हम वास्तव ज्ञान नहीं मिलते। जैसे वाला विद्या नागा में वो विद्या जो सब छात्र आते हैं यहाँ पर विद्या प्राप्त करने के लिए और मिलते, लेकिन वो विद्या से वास्तव विद्या प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलते। वो रुचि है, वो क्या बोलते हैं, वो स्पिरिट जिससे हम परम सत्य का अनुसंधान करेंगे, वो रुचि तो बिल्कुल बंद हो जाते जड़ विद्या का पढ़ाई करने से। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जो जड़ विद्या से बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जड़ो विद्या जो तुम्हारा भाई भाव तुम्हारा भजने बद्ध मोहजनमय अनित्य संसारी जीव के करे गाधा। तो इस जड़ो विद्या भक्ति में भगवान का भजन में एक बड़ा बद्ध होते हैं। और उसका फल क्या होता है कि जीव जो सच्चिदानंद होना चाहिए तो गाधा जैसे ही बन जाता है। तो भगवान कृष्णा ज्ञान का प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार का ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं उस प्रकार ज्ञान भगवान हमको देते हैं। यदि हम भौतिक ज्ञानी होने चाहते हैं तो भगवान हमको बड़ा विद्वान बनेंगे और हम बहुत कुछ मालूम हो सकते हैं, लेकिन कि मैं कृष्ण दास हूँ हम कभी भी समझ नहीं लेंगे। तो ज्ञान वास्तव ऑफ ज्ञान का सूत्र यही है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। परंतु ये सब बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर पीएचडी वाले नोबेल प्राइज ये सब वाले तो इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी तो उनका मन में पूरे जीवन में उनका मन में एक बार भी इस धारणा नहीं आते हैं कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो वो ज्ञान कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूँ, इस ज्ञान बहुत कम लोग मिलते, बहुत कम। और कि श्री कृष्ण भगवान है उसको समझना बहुत दुर्लभ है, और कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य वो भी और भी बहुत दुर्लभ है कि कृष्ण भगवान है। तो ये वचन सब वैष्णव स्वीकार करते हैं अलग अलग ढंग से। तो हमारा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हम श्री जीव गोस्वामी का मार्गदर्शन या जीव गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार हम समझते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सब विष्णु रूप है, विष्णु नारायण चतुर्भुज जो वैकुंठ में निवास करते हैं और सब प्राणी के हृदय के अंदर में भी और सब परमाणु के अंदर में भी चतुर्भुज नारायण है और उनके अनेक अनेक अवतार है, राम नृसिंह वराह कुर्म वामन इत्यादि। परंतु वो मूल रूप है, वो सब विष्णु रूप जो अभिन्न अद्वैत है, जो सब एक ही भगवान है, अनेक अनेक रूप में प्रकट होते हैं, मूल रूप या आदि रूप है कृष्ण। इस गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, वो वास्तव उत्तम सिद्धांत है। और श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में वे कहते हैं कि विष्णु नारायण वो मूल रूप है और कृष्ण नारायण का अवतार है। और माधव संप्रदाय में कहते हैं तो सब रूप एक ही है और भेद दर्शन करना कि एक अवतार दूसरा अवतार से बड़ा वो अपराध होते। तो ऐसे अलग अलग ढंग से सब वैष्णव संप्रदाय स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान ही है। तो सब सहमत होते कि कृष्ण भगवान है। तो कैसे भगवान है तो इस विचार में थोड़ा सिद्धांत का भेद है अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में, लेकिन सब स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान ही है, कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। केवल गौड़िया वैष्णव स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे वो सब दूसरे संप्रदाय के वैष्णव स्वीकार करेंगे। अभी खाली गौरिया वैष्णव स्वीकार करते। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे उपान होगा जाने रा जीवन। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण जो दोनों है परम सत्य। परम सत्य कौन है? कृष्ण। वो बात सही है ना? सही है, लेकिन वो बात तो पूर्ण नहीं है। पूर्ण सत्य है राधा कृष्ण। और कृष्ण तो यदि हम केवल कृष्ण का भजन करते हैं, वो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वो लोग अज्ञानी हैं, वो नहीं जानते। तो कृष्ण की पूरी महिमा राधा कृष्ण। परम सत्य है राधा कृष्ण। और वो राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 527 वर्षों के पहले आविर्भूत हुए नवरी धाम में। तो वो चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे विचार करो कि बहुत कम लोग परम सत्य का अनुसंधान में तत्पर होते हैं, और उनमें ज्यादातर तो निर्विशेषवादी है, कम है वैष्णव। उसमें कुछ शाइव भी है, कुछ लोग बोलते हैं शिव भगवान ही है, कृष्ण नहीं, विष्णु नहीं। तो परम सत्य अनुसंधान करने वाले ही बहुत कम है, उनमें ज्यादातर निर्विशेषवादी। तो जो वैष्णव है, विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव, वो और बहुत कम है। वैष्णव है ऐसे सामान्य वैष्णव। तो सामान्य वैष्णव मतलब भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, परंतु अलग अलग देवताओं भी उनकी पूजा भी करते हैं, और विशेष रुचि नहीं है शुद्ध भक्ति करने का। तो भक्ति करते भौतिक स्वार्थ के लिए, तो वे भी वैष्णव है, लेकिन उनकी वैष्णवता वो पूरी नहीं है, विकृत है। तो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव बहुत कम है, और उनमें वो वैष्णव का संख्या में और बहुत कम है जो चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को मानते। तो चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत बहुत दुर्लभ है, और चैतन्य महाप्रभु को पूरा समझने के लिए तो केवल चैतन्य महाप्रभु को समझना नहीं, तो पंच तत्व के रूप में समझना चाहिए। इस चैतन्य चरितामृत का प्रथम श्लोक है कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, नहीं वंदे गुरु नीश भक्ताम ईशम ईशावतारकम भक्तावतारम भक्ता, नहीं तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए समझना चाहिए गुरु कौन है, गुरु जन कौन है, भगवान के भक्तों कौन है, भगवान कौन है, भगवान का अवतार कौन है, भगवान का भक्त का अवतार कौन है। तो ये सब समझना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य को समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु कौन है इसको समझना चाहिए राधा कृष्ण का समझने के लिए, और राधा कृष्ण को समझना चाहिए जीवन सार्थक बनाने के लिए। तो अद्वैत आचार्य की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्राप्त नहीं होते। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, अद्वैत उनका दूसरा एक प्रसिद्ध नाम है सीतापति। तो सीतापति कौन है? रामचंद्र भगवान। और अद्वैत आचार्य की पत्नी का नाम था सीता, तो वे भी सीतापति है, सीतानास। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बल पाए चैतन्य नेता। तो अद्वैत आचार्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार हो सकते, एक है तत्व से और दूसरा है उनका चरित्र का वर्णन करने से। तो पहले श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य चरितामृत का मतलब चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र का वर्णन का अमृत है। तो उनकी लीला का वर्णन के पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य तत्व कहते हैं। चैतन्य तत्व का मतलब उसके साथ नित्यानंद तत्व, अद्वैत तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व, गुरु तत्व, ये सब चर्चित होते हैं चैतन्य चरितामृत में। और ये सब के साथ रस तत्व, भक्ति तत्व। तो चैतन्य चरितामृत में वो सब तत्व ज्ञान जो जीव गोस्वामी प्रदान किया है उनका सत्संदर्भ में। तो संक्षेप में और सरल भाषा में वो सब तत्व ज्ञान जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है वो सब कुछ है इस चैतन्य चरितामृत में। इसमें अद्वैत आचार, अद्वैत तत्व ये भी है। तो अद्वैत कौन है, अद्वैत आचार्य कौन है? तो तत्व विचार से अद्वैत आचार्य ये है, उनका वर्णन है अद्वैतम हरणाद्वैत आचार्यम भक्ति संशनात् भक्तावतारम ईशम थम अद्वैताचार्यम आश्रय। तो ये एक प्रणाम मंत्र है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण में अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं उनके चरण में आश्रय लेता हूँ। और किस लिए उनका आश्रय लेना चाहिए इस श्लोक में वे वर्णन करते हैं कि वे हरि से अभिन्न है। ये मुख्य कारण है कि हम किस लिए हम अद्वैत को प्रणाम करते हैं कि वे भगवान हरि से अभिन्न है। इसका मतलब है वे भगवान हरि ही है, वे भगवान हैं। तो अद्वैतम हरिणाद्वैत, इसलिए उनका नाम है अद्वैत। उनका नाम नहीं है अद्वैत क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म ऐसा ही नहीं है, वे निर्विशेष ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ज्योति उनके अंग कांति है। वे चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके पहले मंगलाचरण में कहते हैं कि यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। वो अद्वैतवादियों जो ब्रह्म उपासक होते हैं वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं। वो ब्रह्म ज्योति चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति है। तो वे निर्विशेष ब्रह्म है परंतु वो निर्विशेष ब्रह्म जो उनसे अभिन्न है वो ही है। परंतु वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति सर्व उसको समझना परम सत्य का साक्षात्कार का उत्तम स्तर नहीं है। ब्रह्मन परमात्मा भगवान ये परम सत्य का साक्षात्कार तीन स्तर में होते जिसमें निम्नतम है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार, मध्यम है परमात्मा साक्षात्कार और उत्तम है भगवत भगवत साक्षात्कार। तो अद्वैत आचार्य भगवान है तो इसको समझना चाहिए। वे महाविष्णु अवतार सदाशिव अवतार है। महाविष्णु श्री कृष्ण से अभिन्न है परंतु वे स्वयं सोचते कि मैं कृष्ण का दास हूं। इस चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण स्वयं भगवान है और सब अन्य विष्णु रूप उनसे अभिन्न होते हुए भी वे भी भगवान है, परंतु वे भी अभिमान करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और इस चैतन्य चरितामृत में इस विश्लेषण कि भगवत का दशम स्कंद में वो वर्णन है कि महाविष्णु एक द्वारका ब्राह्मण के नवजात सब शिशु उनके पास लेके मतलब वो सब नवजात शिशु तो भूमिष्ट होकर मार गए हैं। और कहानी थोड़ा लंबा है लेकिन तात्पर्य है कि कृष्ण और अर्जुन वो सब ब्राह्मण के सब संतान वापस लाने के लिए महाविष्णु के पास गए हैं और महाविष्णु भगवान कृष्ण को प्रणाम करके बोले कि हाँ कि आपका दर्शन करने के लिए ऐसा किया था तो आप आया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो यही प्रमाण है कि भगवान महाविष्णु तो इनका रूप इतना विशाल होते हुए भी उनके दिव्य शरीर से बीज के रूप में सब ब्रह्मांड उनके लोम कूप से निकाल जाते हैं तो वो अति महान महाविष्णु वे भी अभिमान करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो इस प्रकार भगवान अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न होते हुए भी अद्वैत होते हुए भी अद्वैत का मतलब अभिन्न वे अभिमान करते कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ। अद्वैत हमारे नाद्वैत आचार्यम भक्ति संशनाथ। तो इस वचन पर जब शिल प्रभुपाद मायापुर में वो प्रसिद्ध कथा बोले विशेषकर इस आचार्यम भक्ति संशनाथ इस वचन पर उन्होंने विशेष चर्चा की कि आचार्य कौन है, आचार्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आचार्य शब्द का उत्तम अर्थ या वास्तव अर्थ है जो भक्ति प्रचारक है, आचार्यम भक्ति संक्षना। तो अद्वैत भक्ति के प्रचारक थे, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले अद्वैत आचार्य शांतिपुर और नवद्वीप के सब वैष्णव के नेता थे। और उन्होंने विशेष पूजा की जिससे भगवान हरि कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे कली काल के पति जीवों उद्धार करने के लिए। तो वे आचार्य है, वो स्वयं भक्ति करते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए वे आचार्य है। तो भक्तावतार, वे भक्त का रूप में आते। अद्वैत आचार्य नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वे भक्त का रूप में आए थे। भक्तावतार, वो भगवान है, परंतु इस अवतार में उनका अभिमान नहीं है कि मैं विष्णु भगवान हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं विष्णु के भक्तों उस प्रकार ही है, परंतु वे ईश है, भक्तावतारम ईशम तम, और इसलिए हम आश्रय लेते हैं अद्वैत आचार्य के श्री चरण पर। तो संक्षेप में एक श्लोक में अद्वैत तत्व का विचार है, और उसका पूरा विचार करना तो अनंत देव जो महाविष्णु महाविष्णु के साथ है, जो महाविष्णु के सेवक है, अनंत देव सदैव उनके असंख्य मुखों से भगवान हरि का गुणगान करते हैं और कभी भी अंत नहीं मिलते, इसलिए उनका नाम है अनंत। तो इस प्रकार अद्वैत तत्व का विचार करना तो अनंत काल में उसका अंत प्राप्त करना तो संभव नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे संक्षेप में एक श्लोक में किया है, तो इस प्रकार हम आज उसकी चर्चा करते हैं कि महाविष्णु अवतार सदा शिव का अवतार, शिव का अवतार भी है। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसमें हम शिव की पूजा भी करते हैं अद्वैत आचार्य की पूजा करने से। सदाशिव भगवान विष्णु है, शिव इसका नाम का मतलब है शुभ, परंतु चूंकि महादेव शिव शंकर, एक्चुअली ये सब नाम विष्णु का नाम है तो दुर्गेश ये नाम है, शिव शंकर महादेव आशुतोष ये सब नाम है शिव भगवान का। तो शिव ये शब्द का अर्थ है शुभ, परंतु चूंकि शिव शंकर तमगुण भौतिक संसार में तमगुण के अधिकारी है या अधिष्ठात्री है, और उनकी विशेष सेवा है, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं इस भौतिक संसार में, तांडव नृत्य करने से पूरा संसार का संहार करना, तो इसलिए उनका क्रिया सदैव शुभ नहीं देखते। इसलिए भगवान विष्णु का नाम जो शिव है वो वे सही शिव है, और कि वे वास्तव पूर्ण सदैव सभी दृष्टिकोण से सर्वथा शुभ है, इसलिए भगवान विष्णु का नाम है सदाशिव। और वो विष्णु सदाशिव से, वो भगवान शिव महादेव दुर्गेश प्रकट होते। तो सदाशिव महाविष्णु का अवतार है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य का आविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव की शायद 50 साल के पहले ऐसा, अभी तो मुझे पूरा याद नहीं है कितना साल, बराबर नहीं है, लाइक ऐसा 50 साल के पहले उनका आविर्भाव था लाहौर, एक स्थान जिसका नाम है लाहौर, वो अभी बांग्लादेश में है, और वो स्थान मेघालय से थोड़ा दूर है, मतलब बांग्लादेश और भारत सीमांत के पास है, और मेघालय उस स्थान का नाम है क्योंकि बहुत मेघ वहाँ होते, बहुत बारिश होते वहाँ पर, तो इसलिए वो अद्वैताचार्य का जन्म स्थान आविर्भाव स्थान में गाया था, कितने साल, 30 साल के पहले एक बार गाया था, और जितने बार भी भक्तों प्रयास किया है मंदिर बनाना, अद्वैत आचार्य प्रभु का मंदिर बनाना, तो इतना सा समय वो बारिश के मौसम में और पानी का क्या वो सब इतने बड़े तरंग था कि वो सब मंदिर तो नष्ट हो गया है, तो मैं गाया था बारिश के मौसम में, कुछ दिन के पहले वो अद्वैत का मंदिर जो था तो नष्ट हो गया है पानी में तो खाली दर्शन का दर्शन स्थान का दर्शन किया था, मंदिर तो कुछ मंदिर नहीं था, तो कुछ साल के पहले वो कमेटी जो है अद्वैत आचार्य का जन्म स्थान में, तो वो भूमि वो मंदिर की भूमि इस्कॉन को दिया था, और अभी इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पर, और बहुत आज बहुत बड़ा महोत्सव होगा वो जाएगा, मुझे मालूम नहीं क्या वो जाने के लिए अभी अच्छा व्यवस्था है, मैं जब गया था तो छोटा सा नौ से जाना था, फिर पैदल से बहुत दूर जाना था, बहुत कठिन था वहाँ जाना, परंतु तो कष्ट होते हुए भी उसी दिन इस दिन में लाख लाख जन का समागम होते उसी स्थान पर तो उनका आविर्भाव था लाहौर में, और उनके पिताजी का नाम था कुबेर, वो स्वर्ग के देवता, वो कुबेर नहीं है, उनका पिताजी का नाम था कुबेर, वे वो कुबेर वे राजमंत्री थे, परंतु देश का हाल अच्छा नहीं था, उसका कारण से उस समय चूंकि उस श्रीहट्ट उसे लाकर उसका पुराने नाम है श्रीहट्ट, तो उस समय बहुत ऐसे बहुत कष्ट था, और विशेषकर बहुत राजनैतिक उपद्रव था, तो इसलिए उस समय बहुत लोग विशेषकर ब्राह्मण तो श्रीहट्ट से नवद्वीप धाम गए थे, क्योंकि नवद्वीप बहुत प्रसिद्ध था बंगाल में शास्त्र अध्ययन के लिए, बहुत ब्राह्मण नवद्वीप धाम में रहते थे, तो उस समय जगन्नाथ मिश्रा वे भी गए थे, और श्रीवास ठाकुर, ये श्रीवास ठाकुर भी जन्म लिए थे श्रीहट्ट में, तो कुबेर और उनकी पत्नी क्या नाम है अभी मुझे याद नहीं है, तो नवदीप गए थे और शांतिपुर में भी दो निवास स्थान स्थापन किए हैं गंगा के ऊपर। और ब्राह्मणों चाहते थे गंगा यमुना नर्मदा विशेषकर गंगा के ऊपर निवास कर। तो अद्वैत आचार्य भक्ति प्रचारक थे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले वे भक्ति प्रचार किए थे, परंतु उन्होंने देखा कि कलिकाल चलते और ज्यादा लोग की रुचि नहीं है कृष्ण भक्ति में। नवरी धाम में बहुत विद्वान थे परंतु विष्णु भक्ति बहुत दुर्लभ था। विद्वान होते हुए भी तो बहुत भौतिक विधि पालन करने से माता जी दुर्गा से वर मिलना चाहते थे और ये सब दाम्भिक पंडित सब वैष्णव को निंदा की। तो इसलिए अद्वैत आचार्य उन्होंने सोच वे भगवान है, वे पूर्ण शक्तिमान है, तो पूर्ण शक्तिमान होते हुए भी उन्होंने सोचा कि यदि भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे तो ये सब मूर्ख लोग दुर्जन मूढ़ का उद्धार करना संभव नहीं होगा। और इसलिए अद्वैत आचार्य विशेषकर शालग्राम पूजा आरंभ किया। वो कैसे शालग्राम पूजा की, तो तुलसी पाता देने से और गंगा जल देने से। और उन्होंने बहुत जोर से भगवान कृष्ण को बुलाया, हे भगवान कृष्ण आओ आओ आओ, इस प्रकार हुंका करके उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया। और चूंकि वे भक्त के रूप में है, भगवान कृष्ण गोलोकवासी कृष्ण उनकी याचना सुने, तो पहले जब कृष्ण स्वयं उपस्थित थे उस समय के 4,500 वर्षों के पहले महाविष्णु, चूंकि महाविष्णु भगवान है इसलिए उन्होंने कुछ चालूगिरी करने से भगवान कृष्ण को लाया महाविष्णु धाम में। तो इस समय महाविष्णु क्योंकि भक्त के रूप में है तो काली याचना किया, हे भगवान आओ। और उनका हृदय इतना शुद्ध और उनकी इच्छा इतना बलवती थी कि भगवान उनकी प्रार्थना सुनने बाध्य था कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरा भक्त मुझको बुलाते। जैसे गजेंद्र भी तो बहुत कष्ट के बीच में भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान बाध्य थे आने के लिए। तो इस प्रकार भक्तावतार भगवान महाविष्णु का अवतार अद्वैत आचार्य भगवान कृष्ण का आगमन के लिए प्रार्थना की और इसलिए भगवान स्वयं आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ऐसे ही बहुत लीला है चैतन्य चरितामृत में, सब लीला का वर्णन है। और चैतन्य भागवत में चैतन्य मंगल एक अप्रमाणिक अपशास्त्र है, एक्चुअली दो है, एक है अद्वैत मंगल और दूसरा है अद्वैत प्रकाश। अद्वैत प्रकाश का अनुवाद और प्रकाशन हो गया है इस कंखा माध्यम से, लेकिन अप्रमाणिक है, उसमें बहुत बकवासी है। तो सब शास्त्र जो है तो शास्त्र नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद गण के बारे में बहुत लेख है, लेकिन सब कुछ प्रामाणिक नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में बहुत लेख है, लेकिन सब प्रामाणिक नहीं है। तो क्या है वास्तव शास्त्र, क्या है प्रमाण, क्या है अप्रमाण, जो क्या है ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स करणा पथव से उद्भूत है, तो ये सब समझने के लिए आचार्यों से सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के बारे में, अद्वैत आचार्य के बारे में। तो प्रमाणिक शास्त्र है अद्वैत आचार्य के बारे में। चैतन्य चरितामृत वो मुख्य है, और उसके समान है चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल भी है। ये तीनों विशेष का प्रमाणिक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु सती माता का गर्भ से आविर्भूत हुए नवरी धाम में, और उनका शिशुकाल में उन्होंने बहुत अद्भुत लीला विलास किया। परंतु उस समय भगवान कृष्ण की योगामाया शक्ति से भक्तों भी समझ नहीं पाए कि ये सुवर्ण रूपी गोलोक कान के सदृश बालक गोलोक कान ही है। वो वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पश्चात, वो अशोच के पश्चात, वो सब नारियों कुल नारियों वो नवजात शिशु का दर्शन के लिए गए हैं। उनमें एक थी सीता अद्वैताचार्य की पत्नी, और वे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने से, प्रथम दर्शन करने से समझ गए कि उनके रूप के लक्षणों श्री कृष्ण के रूप लक्षणों से अभिन्न है। मतलब उनका रूप एकदम कृष्ण का रूप जैसे है, एक अंतर है कि कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण काला है, और ये बालक गौर है। तो उसके अलावा ये दोनों रूप तो एकदम एक ही है। इसका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण आए हैं गौरांग का रूप में है। तो पहले से सीता देवी समझ गए कि ये बालक श्री कृष्ण ही है, परंतु योग माया शक्ति से वो सब भक्त नहीं समझ नहीं पाए कि ये दुष्ट बालक, बहुत दुष्ट था गौर, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव ऐसे है और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है तो वे भी दुष्ट है, दुष्ट बालक। तो चैतन्य महाप्रभु तो शिशु काल में बहुत लीला प्रकट की, जिससे हम कृष्णदास कविराज और वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन से हम समझ सकते कि ये भगवान की लीला है, परंतु उस समय के उपस्थित भक्तों समझ नहीं पाए। तो कुछ दिन के बाद इस दीर्घ चर्चा में संक्षेप में कहता हूँ, कुछ दिन के बाद वो निमाय पंडित, उनका नाम निमाय निमाय था, वो नाम सीता देवी, सीता देवी वो शिशु को दिया था, क्योंकि वो नीम का पेड़ के नीचे उनका आविर्भाव था। तो निमाय बहुत बड़ा पंडित बन गया और अभक्त जैसे लीला विलास की एक दाम्भिक महान बुद्धिमान छात्र जैसे लीला विलास की निमाय पंडित। ओ बहुत लीला है। तो निमाय के निमाय जिनका औपचारिक नाम था विश्वम्बा, उनके बड़े भाई जो बलराम के अवतार है विश्वरूप, वे बार बार अद्वैत आचार्य के घर गए थे और पूरा दिन अद्वैत आचार्य के घर में रहते थे और कभी कभी सची माता वो बालक निमाय को भेज दी अद्वैत भवन वो विश्वरूप को बुलाने के लिए, अभी आ जाओ अभी प्रसाद का समय है। तो अद्वैत प्रभु विश्वम्बा का रूप देखने से विमोहित जाता कि इतना सुंदर बालक है। तो ऐसे ही शुरुआत से अद्वैत आचार्य की विशेष प्रीति थी निमाय पंडित के ऊपर, परंतु नहीं समझा कि वो गोलोक हरि जिनको बुलाया था मैं, वे आया है इस जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में। तो इसमें एक बड़ी अद्भुत लीला थी कि चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे ही कुछ दिन छात्र विद्या विलास लीला आविष्कार की और गाया लौटे आने के पश्चात नवदीप वासियों दूसरा प्रकार का निमाय पंडित देखा कि वो जो बड़ा दाम्भिक था बड़ा पंडित जैसे अभिमानित, तो अभी अति विनम्र वैष्णव बन गए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनका स्वयं भगवत रूप प्रदर्शन किए थे और उनके सभी भक्तों को बुलाए कि पहले तुम लोग सब सोचे कि मैं नवरीत धाम का एक बालक था, तो अभी मैं सबको इस विष्णु रूप प्रदर्शन करने से और सबको ज्ञात करता हूँ कि मैं भगवान हूँ। तो अद्वैताचार्य को बुलाया, लेकिन अद्वैता आना नहीं चाहते। अद्वैता प्रभु सोचे कि ये क्या है, एक बालक था और अभी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तो पहले मुझको बुलाए, हमें आया था और अभी मुझको स्वीकार नहीं करते। तो ये सब लीला है, बहुत है। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु ऐसे अत्यद्भुत लीला प्रदर्शन करने से पूरा जगत का निस्तार किया हरि नाम प्रचार करने से, और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का अंतरंग कारण भी है। अंतरंग कारण है कि कृष्ण चाहते थे राधा भाव आस्वादन कर। तो राधा जी तो इतना प्रेम अनुभव करते हैं, वो प्रेम सुख जो अनुभव करते हैं वो कृष्ण का सुख का अनुभव से क्रौ बार अधिक है। तो इसलिए कृष्ण चाहते थे कि वो प्रेम सुख जो मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो प्रेम का विषय हूँ, इसलिए मुझे राधा का रूप में आना है जिससे मैं राधा भाव आश्रित होकर वो प्रेम सुख आस्वादन कर सकता हूँ। तो अद्वैत आचार्य भगवान कृष्ण को बुलाया कृष्ण नाम प्रचार करने से के लिए, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम प्रचार किए थे और उन्होंने व्रज भक्ति का प्रचार किए है, और साथ साथ उन्होंने राधा भाव अनुभव किए है। तो कुछ दिन प्रचार करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु स्थायी रूप के लिए पूरी धाम में निवास किया है, और उस समय हर एक क्षण में चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भावना क्रौ बा बढ़ते रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु एक पागल जैसे सदैव प्रेम विलाप किया है। और इसलिए अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को एक उपदेश दिए थे एक प्रहेली के द्वारा। प्रहेली का मतलब एक छोटी सी कवित्वा जिसका अर्थ बहुत सूक्ष्म है। तो उन्होंने बोले कि अभी बाजार में काफी चावल है, जो आए थे जो लोग आए थे चावल बिकने के लिए तो अभी नहीं रहते क्योंकि सब लोग तो काफी चावल मिला है, और सभी भक्तों इस प्रहेली सुन के सोचा इसका अर्थ क्या है। क्यों मतलब उस समय अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे और महाप्रभु पुरी में थे, तो दूसरे भक्तों में से ये वाणी भेज दिए थे। तो अद्वैताचार्य महाप्रभु को कहते हैं कि काफी चावल है बाजार में और जो आया है बाजार बिकने के लिए छो चला गया है क्योंकि कोई आने वाले नहीं है, सब मिला है चावल। और सब भक्त सोच रहे ये क्या है, अद्वैत क्या कहते हैं, वो इसका मतलब क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि अद्वैताचार्य एक उपासक है, तो उपासक जैसे भगवान को बुलाते हैं और उस पूजा के पश्चात वो ठाकुर जी का विसर्जन करते हैं, तो इस प्रकार करते हैं। तो इसका मतलब था कि अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाए और अभी बोलते ठीक है तुम काज किया है, तुम सबको प्रेम दिए थे तो अभी वापस जाओ गोलोक, इसका मतलब था। तो अद्वैत आचार्य की कृपा से चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए हम अद्वैत आचार्य की उपासना करते हैं। आज हम यहाँ पर वाला विद्यानगर में अद्वैत आचार्य की उपासना करेंगे भगवत दर्शन महोत्सव पालन करने से। ये सब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। पृथ्वी ते आचे चौथो नागरादि गर्म सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, कि सर्वत्र इस पृथ्वी में ही गौर नाम प्रचारित होगा। इस भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके सेनापति भक्त हमारे परमाराध्यतम श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में भेजा है। तो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम का माध्यम से सब विश्ववासियों को प्रेम प्रदान किया है और श्रील प्रभुपाद भी हरि नाम प्रचार करने से कृष्ण भक्ति प्रचार किया और साथ साथ उन्होंने शास्त्र प्रचार किया है और इस भगवत दर्शन पत्रिका का माध्यम श्रील प्रभुपाद का एक विशेष उपाय था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित प्रेम फैलाने के लिए। भगवत दर्शन बाद में हम भगवत दर्शन के बारे में कहेंगे। इसका मतलब है हम अद्वैत प्रभु की उपासना करते हैं भगवत दर्शन महोत्सव पालन करने से, इस संकल्प करने से कि हम जितना प्रयास किया है भक्ति प्रचार में, हम अद्वैत आचार्य का आशीर्वाद लेके हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो आज हम विशेषकर अद्वैत आचार्य की कृपा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अद्वैत आचार्य की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है और गौर निताय की कृपा से हम राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत दर्शन की जय। हरे कृष्ण।